It is the night class dated 16-9-1966. The topic being discussed was
कि जो निराकारी बनेंगे वो ही स्वर्ग में जाएंगे.
Those who become incorporeal will themselves go to heaven.
निराकारी बनेंगे तो निरहंकारी बनेंगे.
If someone becomes incorporeal, he will become egoless.
निरहंकारी बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे.
If he becomes egoless, he will become wiseless.
निर्विकारी को देवता कहा जाता है.
A wiseless one is called a deity.
और देवताएं कहाँ रहते हैं?
And where do the deities reside?
स्वर्ग में रहते हैं.
They reside in heaven.
ये सबको पता है.
Everyone knows this.
तो क्या वो राजाई पाने की दिल नहीं होती है?
So, don't you wish to attain that kingship?
निराकारी बन करके, निर्विकारी और निरहंकारी राजा बन करके स्वर्ग की राजाई पाने की दिल होती है या नहीं होती है?
Do you wish to attain the kingship of the golden age by becoming incorporeal, wiseless and an egoless king or not? Students, we do.
अब तुम जानते हो.
Now you know.
हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ करके.
We study from शिव बाबा through ब्रह्मा.
और संपूर्ण बन करके राजाई पद को पाने के अधिकारी 21 जन्मों के लिए बनते हैं.
Become complete and the one with the right, meaning adhikari, of attaining the position of kingship for 21 births.
किससे बनते हैं? शिव बाबा से.
From whom do you become that? From शिव बाबा.
किसके द्वारा?
ब्रह्मा
द्वारा. ब्रह्मा तो सभी छोड़ दिए.
Through whom? Students, through Brahma. Through Brahma? In fact, Brahma left his body.
ब्रह्मा तो 69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया. ब्रह्मा द्वारा कहाँ से आएगा?
ब्रह्मा सर्टनली लेफ्ट हिज बॉडी इन 1969 ऑन 18 जनवरी. हाउ इज इट थ्रू ब्रह्मा? स्टूडेंट, बाबा हैज सेड दैट विच एवर बॉडी ही एंटर्स ही नेम्स हिम ब्रह्मा.
जिस तन में भी आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं.
In whichever body he enters, he names him Brahma.
अच्छा.
अच्छा.
तो वो शिव बाबा नहीं हुआ?
So, isn't he शिव बाबा?
शिव बाबा कहते हैं ना, बाबा तो होते थे.
नहीं नहीं नहीं. शिव तो ज्योतिबिंदु का नाम है.
Student comments. No, no. शिव is certainly the name of the point of light.
ज्योतिबिंदु तो आत्मा आत्मा बिंदु बिंदु का बाप है.
The point of light is certainly the father of the point-like souls.
Jyoti Bindu Shiv to Bindu Bindu Atmao ka baap hai.
The point of light Shiv is certainly the father of the point-like souls.
To wo Baba to nahi hai.
He certainly isn't Baba.
Baba to tab kaha jata hai jab Sakar Sharir mein pravesh karta hai.
He is called Baba only when he enters the corporeal body.
तो 69 के बाद भी अगर किसी तन में प्रवेश किया है उसने, तो जिसमें प्रवेश किया तो उसी के द्वारा शिव बाबा तो हुआ ना.
सो इवन इफ ही हैज एंटर्ड अ बॉडी आफ्टर 1969, ही सर्टेनली शिव बाबा थ्रू द वन ही एंटर्ड, इजंट ही?
तो शिव बाबा से.
सो फ्रॉम शिव बाबा.
शिव बाबा से नहीं कहा. किससे?
He didn't say from the father Shiv. From whom?
Shiv Baba se Brahma dwara.
From Shiv Baba through Brahma.
To wo Brahma kaun hua phir jiske dwara hai hum rajai pad ko paane ke 21 janmon ke liye adhikari bante hain.
So who is that Brahma through whom they become entitled to attain the position of kingship for 21 births?
21 जन्मों के लिए. 20 जन्मों के लिए नहीं.
फॉर 21 बर्थ्स, नॉट फॉर 20 बर्थ्स.
21 जन्मों के लिए अधिकारी बनते हैं, वो ब्रह्मा कौन जिसके द्वारा 21 जन्मों के अधिकारी बनते हैं?
We become entitled to kingship for 21 births. Who is that Brahma through whom we become entitled to kingship for 21 births?
जिसमें प्रवेश किया वो तो शिव बाबा ही हो गया.
The one whom he entered himself was Shiv Baba.
उस शिव बाबा से बनते हैं हम 21 जन्मों के अधिकारी.
We become entitled to kingship for 21 births from that Shiv Baba.
लेकिन ब्रह्मा द्वारा बनते हैं. तो वो ब्रह्मा कौन?
बट वी बिकम दैट थ्रू ब्रह्मा. सो हु इज दैट ब्रह्मा?
जगदम्बा.
स्टूडेंट्स, जगदम्बा, जगदम्बा,
जगदम्बा
वो ही ब्रह्मा जो 69 तक जिसने पुरुष चोले में पार्ट बजाया, जिसकी पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, वही ब्रह्मा फिर कोई नारी चोले में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में पूजनीय बनता है. उसके द्वारा हमको 21 जन्मों की राजाई दिलवाते
हैं. That very Brahma who played his part in a male body till 1969, who isn't worshipped, whose temples or idols aren't prepared, he enters a female body and becomes worship worthy in the form of Jagdamba. He gives us the kingship of 21 births through him.
आज से 5000 साल पहले जब तुम राज्य करते थे तो तुमको शिवालय का मालिक कहा जाता था.
When you used to rule 5000 years before, you were called the masters of शिवालय, Shiv's house.
शिवालय,
शिवालय.
आलय किसका? शिव का.
Whose आलय? Shiv's.
आलय माने घर.
आलय means house.
किसका घर था वो?
शिव
का घर था.
अरे
Whose house was it? It was Shiv's house. अरे
बाप का घर होता है तो बाप ही बनाता है ना?
If it is the father's house, the father alone builds it, doesn't he?
तो शिवालय होगा नाम, तो शिवालय को किसने बनाया होगा?
So if शिवालय is the name, who would have built it?
शिव बाबा ने ही बनाया होगा.
शिव बाबा himself would have built it.
तो शिवालय के मालिक कहा जाता था तुमको.
यू आर कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ शिवालय.
तुमको मन?
व्हाट डज यू मीन?
जो बच्चे सन्मुख बैठते हैं, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके लिए कहा जाता है तुमको.
इट इज सेड यू फॉर द चिल्ड्रन हु सिट फेस टू फेस, हु स्टडी बीइंग फेस टू फेस.
उनको नहीं, जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते.
इट इज इन सेड फॉर दोज हु डोंट स्टडी बीइंग फेस टू फेस.
तुमको शिवालय का मालिक कहा जाता था.
यू वर कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ शिवालय.
माना जो बाप के सन्मुख आकर के डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, वो 21 जन्मों के शिवालय के मालिक बनते हैं.
इट मीन्स दोज हु कम फेस टू फेस टू द फादर एंड स्टडी डायरेक्टली बिकम द मास्टर्स ऑफ शिवालय फॉर 21 बर्थ्स.
तुम शिवालय के मालिक थे, अभी तुम वैश्यालय के मालिक बन पड़े.
यू आर द मास्टर्स ऑफ शिवालय, नाउ यू हैव बिकम द मास्टर्स ऑफ द ब्रॉथल.
शिवालय में चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं और बीच में शिवलिंग होता है.
The idols of deities are kept in all the four directions in the Shivalaya and there is the Shivling in the center.
तो बड़ा कौन हुआ?
So who is great?
शिव बाबा बड़ा हुआ.
शिव बाबा is great.
और आसपास जो बैठे हैं वो सब बच्चे बैठे हैं.
And all those who are sitting around are the children.
वो सब एक की उपासना करते हैं.
They all worship the one.
सबकी बुद्धि एक में लगी हुई, इसलिए उसका नाम है शिवालय.
Everyone's intellect is engrossed in the one. This is why its name is Shivalaya.
और वैश्यालय में क्या होता है?
And what happens in a brothel?
वैश्या एक तो होती है, लेकिन उसकी बुद्धि अनेकों में लगी हुई होती है.
A prostitute is certainly one, but her intellect is engaged in many.
तो जब अनेकों में बुद्धि बिखर जाती है तो उसको वैश्या कहा जाता है.
सो व्हेन हर इंटेलेक्ट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स मनी शी इज कॉल्ड अ प्रोस्टिट्यूट.
तो शक्ति छीन हो गई ना.
देन शी लूजेस पावर डजंट शी.
शक्ति छीन होने से उस घर की कोई वैल्यू नहीं रहती.
When she loses power, there is no value of that house.
बोला शिवालय के मालिक कहे जाते थे और शिवालय स्वर्ग को कहा जाता है.
It was said, you were called the masters of Shivalay and heaven is called Shivalay.
तुम यहाँ आते हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बने.
You come here to become the residents of heaven from being the residents of hell.
माने वैश्यालय है नरक और शिवालय है स्वर्ग.
It means brothel is hell and शिवालय is heaven.
अगर पवित्र न रहे तो फिर राजा रानी बन न सकेंगे.
If you don't remain pure, you won't be able to become kings and queens.
तुम्हारी दिल में जो आती है कि हमको कृष्ण जैसे बच्चे मिले.
यू विश वी शुड हैव चिल्ड्रन लाइक कृष्ण.
सो तो तब होंगे जब माँ बाप को फॉलो करेंगे.
दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू फॉलो द मदर एंड द फादर.
इसको फॉलो करेंगे. दो तरह से फॉलो करना होता है.
होम शुड यू फॉलो स्टूडेंट्स द मदर एंड फादर. देर आर टू काइंड ऑफ फॉलोइंग.
एक तो कर्मों में फॉलो करना होता है.
One is to follow in actions.
और दूसरा direction को follow करना होता है.
And the other is to follow the directions.
तो तुम direction को follow करेंगे. किसके direction को.
So, if you follow the directions, whose directions?
माँ बाप के direction को follow करेंगे तो तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बनेंगे.
If you follow the directions of the mother and father, you will become the residents of heaven from being the residents of hell.
और कृष्ण जैसे बच्चे तुमको मिलेंगे.
And you will have children like Krishna.
अब तुम आए हो वेद के बाप दादा के घर.
Now you have come to the unlimited बाप दादा's house.
क्या
बॉस
अब इसके घर आए हो.
To whose house have you come now?
बेहद के बाप दादा. बेहद के बाप दादा. हद के बाप दादा.
To the unlimited बाप दादा. The unlimited बाप दादा and limited बाप दादा.
हद के जो बाप होते हैं वो हद की प्रॉपर्टी देते हैं.
The limited fathers give limited property.
10, 20, 50, 100, 200 बच्चों के बाप होंगे. बहुत करेंगे क्रैश जैसे बाप होंगे तो 100, 150 करोड़ के बाप होंगे.
इफ ही इज अ फादर ऑफ 10, 20, 50 और 100 to 200 चिल्ड्रन एट द मोस्ट देयर विल बी फादर्स लाइक क्राइस्ट. सो ही विल बी द फादर ऑफ 1 to 2.5 billion पीपल.
बेहद के बाप नहीं कहे जा सकते.
दे कांट बी कॉल्ड द अनलिमिटेड फादर.
बेहद के बाप माना.
What does the unlimited father mean?
500, 700 crore जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब का बाप.
He is the father of all the 5 to 7 billion human souls.
तो तुम बेहद के बाप के पास बच्चे बनते हो.
So you become the children of the unlimited father.
बेहद के बाप दादा के घर आए हो.
You have come to the unlimited बाप दादा's house.
किसके घर आए हो.
To whose house have you come?
बेहद के बाप के बाप दादा की कोई आत्मा है शरीर छोड़ती है तो कहाँ जाके जन्म लेती है. बाप के घर में जन्म लेती. लेकिन जन्म लेने से पहले 9 महीने पेट में पकती है.
To unlimited बाप दादा. If a soul leaves its body, where does it go and have birth? It is born in a father's house. However, it becomes mature in the stomach for 9 months before birth.
पकती है ना.
इट बिकम्स मैच्योर डजंट इट.
वो तो 9 महीने पकती है. यहाँ तुम आते हो बाप के पास तो एक दिन आना एक दिन जाना 7 दिन की बट्टी.
In fact, they become mature for 9 months. Here, when you come to the father, one day is for coming, one day is for going, and the bhatti of 7 days.
तो आते हो, तो भी तुम्हारी स्मृति की भट्टी कहाँ लगी रहती है?
When you come, where is your bhatti of remembrance connected?
बाप की याद में.
In the father's remembrance.
और जब जाते हो, तो भी खुशी-खुशी, उसी की याद में जाते हो, तो 9 दिन बुद्ध रूपी पेट में पकना पड़ता है.
And when you go happily only in his remembrance. So, you have to become mature in the stomach-like intellect for 9 days.
तो ये भी तुम्हारी भट्टी हो गई.
So, this is also your bhatti.
वो गर्भ में आत्मा पकती है और यहाँ भट्टी में पकती है.
That soul becomes mature in the womb. And here, they become mature in bhatti.
तो तुम बाप के घर के बच्चे बन जाते.
So, you become the children of the father's house.
वो बच्चे तो पेट से जन्म लेते हैं.
Those children are born through the stomach.
और यहाँ है बाप का बुद्ध रूपी पेट.
And here it is the father's stomach-like intellect.
है तो तुम याद करते हो, बाप के घर में जाते हो, बाप सा जो भट्टी करते हो 7 दिन की, उसके बाद तुमको जो निश्चय पैदा होता है, वो निश्चय के आधार पर तुम बच्चे बन जाते हो.
So you remember him. Go to the father's house and do the 7-day bhatti there. After that, you develop faith. You become his children on the basis of that faith.
Nischay hua, mana paida hua. Anischay hua, mana mar gaya.
When you develop faith, it means you are born. When you have doubts, it means you died.
To tumko pakka nischay baith jata hai. माने तुम बाप के बच्चे, बाप के घर के बच्चे बन जाते हो.
So when you develop firm faith, you become the father's children, the children of the father's house.
तो बाप दादा के घर, बेहद के बाप दादा के घर आए हो.
So you have come to the unlimited बाप दादा's house.
दोनों बाप तुमको सिंगारते हैं.
Both the fathers decorate you.
क्या?
What?
दोनों कौन से बाप?
Which both the fathers, students, Laukik and Alaukik? No.
Dono baap tumko singaarte hain. Laukik baap thode singaarte hain. Wo to aur bigaad dete hain shaadi barbaadi karke.
Alaukik aur
father. Both the fathers decorate you. The Laukik father certainly doesn't decorate you. He degrades you all the more by arranging your marriages and so on. Students, alaukik and paralaukik. Yes.
दोनों बाप का मतलब है जो इस मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है.
Both the fathers means the unlimited father of this human world.
है और जो आत्माओं का बाप है.
And the father of the souls.
वो दोनों बेहद के बाप तुमको श्रृंगारते हैं.
Both those unlimited fathers decorate you.
योग बल और ज्ञान बल से श्रृंगारते हैं.
They decorate you with योग बल and the power of knowledge.
क्या?
What?
योग बल भी तुमको मिलता है.
You receive योग बल as well.
योग बल माना?
What does योग बल mean?
योग माना क्या होता है?
What does योग mean?
योग माना स्नेह. क्या?
योग means affection, love.
प्यार कैसे होता है?
How is love?
मुख से अच्छी अच्छी बातें करें तो प्यार होता है, तो भी प्यार होता है.
Is it love when someone speaks nice things through the mouth? That is also love.
मीठी मीठी दृष्टि मिले तो भी प्यार होता है.
If you receive very sweet drishti, that is also love.
माने इंद्रियों से ही प्यार होता है.
It means there is love only through the इंद्रिया.
अच्छे अच्छे वाइब्रेशन मिले तो भी प्यार होता है.
इवन इफ यू रिसीव वेरी गुड वाइब्रेशन, इट इज लव.
तो बाप तुमको ज्ञान और योग बल से श्रृंगारते.
सो द फादर डेकोरेट्स यू विद द पावर ऑफ नॉलेज एंड योग.
योग बल माना प्रीति बल.
योग बल मीन्स द पावर ऑफ लव.
और ज्ञान से श्रृंगारते.
एंड ही डेकोरेट्स यू विद नॉलेज.
ज्ञान माना जानकारी,
नॉलेज मीन्स इन्फॉर्मेशन,
वो जानकारी देते हैं जो दुनिया में तुमको 63 जन्म किसी ने भी नहीं।
He gives you that information which no one gave you in the world for 63 births.
आत्मा की जानकारी, परमात्मा की जानकारी और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी जानकारी।
He gives you all the information of the soul, the supreme soul and the beginning, middle and end of this world.
जब सृष्टि के आदि मध्य अंत की तुम्हें जानकारी मिलती है,
When you receive the information of the beginning, middle and end of the world,
तो तुम्हें अपने 84 जन्मों की भी जानकारी मिल जाती है।
You also receive the information of your 84 births.
तो तुम्हारी आत्मा श्रृंगारमय हो जाती है।
Then your soul becomes decorated.
यहाँ बेगर बनेंगे तो वहाँ प्रिंस बनेंगे।
If you become a beggar here, you will become a prince there.
आत्मा श्रृंगारी कब जाए?
When will a soul be decorated?
सब कुछ बाप का।
When it thinks, everything belongs to the father.
कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा।
Nothing belongs to me. Everything belongs to you.
सारी सूर्य सेवा में अर्पण कर दिया तो बेगर हो गए ना।
When you offer everything in the Ishwarya service, you become a beggar. Don't you?
और बेगर हो गए तो वहाँ वो प्रिंस बनते।
And when you become a beggar, you become a prince there.
वहाँ कहाँ?
What does there mean?
इसी दुनिया में।
In this very world.
अगली दुनिया में नहीं, अगले जन्म में नहीं।
Not in the other world, in the other birth.
यहाँ बेगर बनेंगे, फुल बेगर बनेंगे, धन धन धाम सौहार्द परिवार सब की बाजी लगाएंगे।
When you become a complete beggar here, When you stake everything, like the body, wealth, abode, friends and family.
पांडवों ने क्या किया था?
What did the Pandavas do?
पांडवों ने भी जुआ खेला था, कौरवों ने भी जुआ खेला था।
The Pandavas as well as the Kauravas gambled.
पांडवों ने बाजी लगाई।
Pandavas staked everything.
क्या?
What?
धन धन धाम सौहार्द परिवार बीवी बाल बच्चों की बाजी लगाई थी ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया।
They stake their body, wealth, abode, friends, family, wife and children. They offered them for the Ishwarya service.
तो जरूर उनको प्राप्ति होती है।
So they receive attainments for sure.
और कौरवों ने चालाकी की।
And the Kauravas showed cunningness.
उन्होंने दिखाने के लिए लगाया तो तन धन धाम, लेकिन अपना अपनी मुट्ठी में रखा और
They staked their body, wealth and abode for the sake of showing it, but they kept theirs in their control and
और क्या किया? और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में ले लिया।
What else did they do? They took everything of the Pandavas as well in their control.
तो ये तो चालाकी हो गई।
So this was a trick.
इस जुआ में जो परमात्मा बाप जुआ खिलाए रहे हैं, उसमें कोई की चालाकी तो चल न सके।
The gambling that the Supreme Soul Father is making us do, no one's trick can work in it.
तो यहाँ तुम beggar बनेंगे तो वहाँ prince बनेंगे।
So, if you become a beggar here, you will become a prince there.
वहाँ इन जेवरों आदि में मस्त नहीं होना चाहिए।
You shouldn't be engrossed in these jewelries etc. there.
वहाँ माने यहाँ।
There means here. They have written it wrong.
यहाँ इस दुनिया में ये जेवर आदि पहनने में मस्त नहीं हो जाना चाहिए। क्यों?
Here in this world, you shouldn't be engrossed in wearing these jewelries and so on. Why?
अगर हम बेगर बने तो जेवर कहाँ से पहन लेंगे?
If we become a beggar, how will we wear jewelries?
जब बेगर हो गए तो बेगर क्या सोने की जंजीरें गले में पहन के घूमते हैं क्या? फिर उनको कोई पैसा देगा?
When we have become a beggar, do beggars roam with golden chains around their neck? Students, no. If so, will anyone give them money? Students, they won't give.
अरे यहाँ तो बाप है हमारा धन संपत्ति देने वाला, वो भी देगा, ये तो दुनिया में मस्त है। अगर दुनिया में मस्त है तो बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती।
Here, it is the father who gives us wealth and money. He also sees that this one is engrossed in the world. If he is engrossed in the world, he can't receive the father's property.
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भूलना नहीं है.
The father says, you don't have to forget this while living in the household.
भल घरों में रहते हो.
Do you stay at home?
तो भी जेवर आदि पहनना नहीं है.
You shouldn't wear jewelries and so on.
अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे.
Consider yourself as a soul and remember Shiv Baba. Then you will become pure from impure.
इन आँखों से जो कुछ देखते हो.
Whatever you see through these eyes.
क्या कहा?
What was said?
वो सब भस्म हो जाएगा.
All that will burn into ashes.
ऐसे थी ये बात. ओ मनुष्य गुरु भी बताते चले आए.
As such, those human gurus have also been saying this.
गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई.
गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई.
ये आँख की जो इंद्रिय है ना, ये जहाँ जहाँ तक जाती है और जो कुछ इससे दिखाई पड़ता है, जहाँ जहाँ मन जाता है वो सब माया रूप है. आज है और कल कल नहीं रहेगा.
Wherever these indriya, the eyes reach, and whatever they see, wherever the mind reaches, all that is the form of maya. It is present today and won't be there tomorrow.
तो उनके कहने से तो असर नहीं पड़ा.
So you weren't affected by their saying this.
अभी तो बाप आकर ये बात बताए रहे.
Now the father has come and is telling this concept.
क्या?
What?
कि अब ये दुनिया बस मोने वाली है. ये सब कुछ दिखाई जो पड़ रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, दिखाई पड़ रहा है कि बहुत अच्छा स्वर्ग बन रहा है, वो सब अब एटम बमों की आग में बस मोने वाला है.
नाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू टर्न टू एशेस. ऑल दैट इज विजिबल, द वेरी हाई बिल्डिंग्स, इट कैन बी सीन दैट अ वेरी गुड हेवन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. ऑल दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू एशेस विद द फायर ऑफ एटम बॉम्ब्स.
तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो भस्म हो जाएगा.
सो वट एवर यू सी थ्रू दीज आईज विल टर्न इन टू एशेस.
इन आँखों को अब बस में करना है.
यू हैव टू कंट्रोल दीज आईज नाउ.
ये बेहद का बाप समझाते हैं, तुम्हारे दो बाप हैं.
दिस अनलिमिटेड फादर एक्सप्लेन्स, यू हैव टू फादर्स.
दुख में इस बाप को याद करते हैं.
यू रिमेम्बर दिस फादर इन सोरो.
क्या?
वॉट?
जब भी दुख पड़ता है तो दुख में स्मरण सब करें.
Whenever you are in sorrow, everyone remembers God in sorrow.
उसको याद करते हैं.
You remember him.
और जब सती उस त्रेता में सुखी होते हैं तो कोई याद नहीं करते. इस दुनिया में भी ऐसे ही.
And when you are happy in the golden and silver age, no one remembers him. It is the same in this world too.
जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, अरबपति हैं, मल्टी मिलियनायर हैं, उनको भगवान की दरकार आई नहीं, अपने ही नशे में चूर है.
द वेरी बिग मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स, बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स डोंट नीड गॉड एट ऑल. दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद देमसेल्व्स.
और जो गरीब है, जो दुखी है, उनको भगवान की दरकार है, वो भगवान के पीछे दीवाने हैं.
एंड दोज हु आर पुअर एंड सोरफुल नीड गॉड. दे आर मैड आफ्टर गॉड.
तो दुख में इस बाप को याद करते हैं, दुख हर कर सुख दो, ऐसे कहते हैं.
सो यू रिमेम्बर दिस फादर इन सोरो, टेक अवे सोरो एंड गिव अस हैप्पीनेस. यू से दिस.
तो अपना तो सुखधाम के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, तो अब दुखधाम से ममत्व मिटाना चाहिए.
सो यू आर मेकिंग पुरुषार्थ फॉर सुखधाम, मीनिंग द अबोड ऑफ हैप्पीनेस. Now you should let go your inclination for dukdham, meaning the abode of sorrow.
10 सालों के अंदर ये सब नष्ट हो जाएगा.
Everything will be destroyed within 10 years.
क्या था?
What was said?
मुरली मुरली है.
When is it the murli of?
चाचा.
It is the murli of 1966.
उस समय बाबा ने क्या बोला?
What did Baba say at that time? स्टूडेंट विद इन 10 ईयर्स
10 साल के अंदर ये जो कुछ तुम देखते हो वो सब नष्ट हो जाए. तुम नष्ट हुआ क्या?
वॉट एवर यू सी थ्रू दीज आईज विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड विद इन 10 ईयर्स. सो वॉज इट डिस्ट्रॉयड?
नहीं नष्ट हुआ.
स्टूडेंट इट वॉज इन डिस्ट्रॉयड. वॉजेंट इट डिस्ट्रॉयड?
भाग गए? कौन भाग गए?
स्टूडेंट दे रैन अवे. दे रैन अवे? हु रैन अवे?
भाग गए.
स्टूडेंट दोज विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट. दोज विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट रैन.
कहाँ भाग गए?
वेयर डिड दे रन?
दुनिया में गए.
दुनिया में भाग गए? तो माउंट आबू छोड़ के भाग गए. झूठी बात बोलते.
स्टूडेंट they ran off to the world. Did they run off to the world or did you leave Mount Abu and run away? You tell a lie.
कौन भाग गए?
Who ran away?
आप हुए? मर गई दुनिया.
When you die, the world is dead for you.
अपने को देह और देह भान की दुनिया से मार दिया, भुला दिया, तो वो दुनिया भूल गई माने हम उस दुनिया से मर गए. हमें उस दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं.
When you kill yourself from the body and the body conscious world, when you forget them, when you forget that world, it means you are dead for that world. We don't have anything to do with that world now.
कौन सी दुनिया से?
Which world?
वो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया जो सन 76 से पहले तैयार हुई थी. सन 76 के बाद अब उस दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं. हमारे लिए वो दुनिया मर गई.
That confluence age world of Brahmins which became ready before the year 1966, we don't have any connection with that world now after the year 1966. That world is dead for us.
जैसे लौकिक व्यवहार में भी बहुत दुखी हो जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? हमारे लिए जैसे तुम मर गए.
Just like when someone becomes very sorrowful in the Laukik world too, what does he say? You are dead for me.
तो 10 सालों के अंदर ही सब नष्ट हो जाएगा.
So all this will be destroyed within 10 years.
माने तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 76 के बाद ये बैठेगा कि अब ये दुनिया हमारे काम की नहीं है. कौन सी दुनिया?
It means it will sit in the intellect of you children number wise according to Purushart after 1976. Now, this world is of no use to us. Which world?
वो जो बड़ी दुनिया है 500 करोड़ की, वो तो पहले ही हमारे काम की नहीं रही जब बेसिक नॉलेज में आई.
That big world of 5 billion souls was already of no use to us when we came in the basic knowledge.
और फिर एडवांस नॉलेज में आने के बाद जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी हमारे लिए झूठी हो गई. वो हमारे काम की नहीं रही.
एंड आफ्टर कमिंग इन द एडवांस नॉलेज द ब्राह्मण वर्ल्ड इज ऑल्सो फॉल्स फॉर अस. इट इज ऑफ नो यूज टू अस.
तो 10 साल के अंदर ये सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो गई.
सो ऑल दिस विल बी डिस्ट्रॉयड विद इन 10 ईयर्स. इट विल फिनिश.
बाप आए हैं सबको ले जाकर राजा ही देने के लिए.
The father has come to take everyone back and give them the kingship.
अब जो बचे हैं ऐसी स्टेज में कि सब पुरानी दुनिया से हमको कुछ भी लेना देना नहीं.
Now, those who have survived such a stage, we have no connection with this old world.
सन 76 में विनाश की बात आई थी तो बहुतों ने अपना तन धन दाम स्वर्ण परिवार सारा ईश्वरीय सेवा की बाजी में लगा दिया था.
When the declaration of destruction was made in the year 1976, many staked their body, wealth, abode, friends and family for the Ishwariya service.
तो beggar हो गए ना?
So they became beggars, didn't they?
तो beggar हो गए तो उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि अब ये दुनिया हमारे लिए काम की नहीं.
So when they became beggars, they had this in their intellect. Now this world is of no use to us.
तो बाप आए हैं सबको ले जाकर राजा ही देने के लिए.
सो द फादर हैज कम टू टेक एवरीवन बैक एंड गिव देम किंगशिप.
तो अब तुम बच्ची किसके पास आई हो?
नाउ टू होम हैव यू डॉटर कम?
जिसको आधा कल्प पुकारते रहे उसके पास आए।
यू हैव कम टू द वन होम यू कॉल्ड फॉर हाफ अ साइकिल।
रावण पतित बनाता है और बाप पावन बनाते हैं।
रावण मेक्स यू इम्प्योर एंड द फादर मेक्स यू प्योर।
63 जन्म से रावण ने तुमको पतित बनाया।
रावण मेड यू इम्प्योर फॉर 63 बर्थ्स।
और एक जन्म में बाप तुमको मिला है।
एंड यू हैव फाउंड द फादर फॉर वन बर्थ।
काहे के लिए? पतित से पावन बनाने के लिए।
फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग यू प्योर फ्रॉम इम्प्योर।
रावण ने पतित कैसे बनाया?
हाउ डिड रावण मेक यू इम्प्योर?
कोई तरीका होगा पतित बनाने का।
There must have been some method of making you impure.
संग के रंग से पतित बनाया।
He made you impure by the color of his company.
रावण माना 10 शेर और उसकी 20 भुजाएं।
रावण means the one with 10 heads and 20 arms.
20 भुजाएं और 10 शेर। शेर माना अकल।
20 arms and 10 heads. Head means opinion.
दसियों प्रकार की अकल हमको मिली और हम सत्य वचन महाराज करते रहे और उनकी मत पर चलते चलते गुरुओं की मत पर चलते चलते नीचे गिरते आए।
We received 10 kinds of opinions and we considered it to be true and we fell while following the opinions of the gurus.
अब इस एक जन्म में बाप हमको मिला है तो हम फिर अनेकों की मत पर क्यों चले?
Now we have found the father in this one birth. So why should we follow the opinions of many?
अब हमें एक की मत पर चलना है।
We have to follow the direction of the one now.
और जो नई दुनिया बननी है उस नई दुनिया में जाकर के हम मालिक बनेंगे।
In addition, we will go and become the masters of the new world that is to be established.
कब बनेंगे?
When will we become that?
जब पावन बने।
When they become pure.
बाबा पावन बनाते हैं।
बाबा मेक्स अस प्योर।
पावन बनने का तरीका बताई दिया।
He told us the method to become pure.
एक को याद करेंगे, एक का संग करेंगे तो पावन बनेंगे।
If we remember the one, if we stay in the company of the one, we will become pure.
अनेकों को याद करेंगे, अनेकों का संग करेंगे तो पतित के पतित ही रह जाएंगे।
If we remember many, if we stay in the company of many, we will remain just impure.
तो ये बात याद है।
So do you remember this?
क्या?
What?
कि पतित से पावन बनना है।
You have to become pure from impure.
अब शिव बाबा ने ये रथ किराए पर लिया है।
Now, शिव बाबा has taken this chariot on rent.
ये मकान है ब्रह्मा बाबा का।
दिस इज ब्रह्मा बाबाज हाउस।
इसने किराए पर लिया है और बाकी 10 वर्षों के लिए है। बात बाकी है।
ही हैज टेकन इट ऑन रेंट एज फॉर द रेस्ट इट इज अ मैटर ऑफ 10 इयर्स।
क्या?
What?
जो मकान किराए पर लिया है।
द हाउस विच ही हैज टेकन ऑन रेंट।
वो बाबा ने लिया है। शिव बाबा ने किराए पर लिया है।
बाबा हैज टेकन इट। शिव बाबा हैज टेकन इट ऑन रेंट।
और बाकी 10 वर्षों के लिए है। बात बाकी है।
एज फॉर द रेस्ट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 इयर्स।
अब ये भगवान का सच्चा रथ अब ही बनता है।
ही बिकम्स द ट्रू चैरियट ऑफ गॉड ओनली नाउ।
अब
नाउ
अब ये भगवान का सच्चा रथ बनता है।
नाउ ही बिकम्स द ट्रू चैरियट ऑफ गॉड।
अब कब मैं भी इससे पूछता हूँ कि सुनाओ बच्चे किराया कितना लोगे?
नाउ इवन आई आस्क हिम समटाइम्स, टेल मी चाइल्ड हाउ मच रेंट विल यू टेक?
तो कहते हैं नई दुनिया में हमको प्रिंस बना देना।
ही से मेक मी अ प्रिंस इन द न्यू वर्ल्ड।
क्या?
What?
नई दुनिया में हमको प्रिंस बनाए देना।
मेक मी अ प्रिंस इन द न्यू वर्ल्ड।
तो नई दुनिया में प्रिंस बन जाते हैं।
सो ही बिकम्स अ प्रिंस इन द न्यू वर्ल्ड।
तो घाटा हुआ या नुकसान हुआ ना, घाटा हुआ या फायदा हुआ?
Did he incur loss or gain profit?
फायदा हुआ.
Students, he gained profit. Did he gain profit?
नई दुनिया में प्रिंस बन जाएंगे रथ देने से ही.
He will become a prince in the new world just by giving his chariot.
हैं? हाँ, घाटा हो गया ना?
Student, he has to leave his body. Yes. So, he incurred loss, didn't he?
क्योंकि बाबा तो कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण डायरेक्ट बनाने आया हूँ.
It is because Baba says, I have come to directly make you into Narayan from a man.
क्या?
What?
नर से डायरेक्ट नारायण बनाता हूँ.
I directly make you into Narayan from a man.
बीच में प्रिंस नहीं बनाता हूँ.
I don't make you a prince in between.
तो कहते हैं नई दुनिया में प्रिंस बना देना, बस हमें इतना ही चाहिए.
So he says, make me a prince in a new world. That's it. That's all I want.
अब बाबा कहे इनसे इंच मनुष्य सृष्टि में कोई हो नहीं सकता.
Now Baba says, no one can be higher than them in the human world.
इनसे ऊंच.
Higher than whom?
इशारा करते
हैं. He used to indicate.
इनसे ऊंच. इनसे माना?
Higher than them. What does them mean?
लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे.
He used to indicate the picture of लक्ष्मी नारायण.
कि तुम तो कहते हो हमको प्रिंस बना देना.
Saying, you say, make me a prince.
और बाबा कहते हैं इनसे ऊंच दुनिया में कोई हो नहीं सकता.
And Baba says, no one can be higher than them in the world.
तो लक्ष्य प्रिंस बनने का लेना चाहिए या नर से डायरेक्ट नारायण बनने का लेना चाहिए? नारायण बनने का लक्ष्य लेना चाहिए.
So, should you take the aim of becoming a prince or of directly becoming Narayan from a man? You should take the aim of becoming Narayan.
तो जो ऊंच है सबसे ऊंच दुनिया में कौन हुआ? प्रिंस हुआ या प्रिंस का बाप हुआ?
So, those who are high, who is the highest in the world? Is it the prince or the prince's father?
जो प्रिंस को जन्म देने वाला बाप नारायण होगा, नर नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, वो उसका बाप उससे भी ज्यादा ऊंच हुआ. उससे ज्यादा दुनिया में ऊंचा कोई होता नहीं.
The father who gives birth to the prince, that is Narayan, Nar Narayan, who directly becomes Narayan from a man, is higher than even him. There is no one higher than him in the world.
तो बाबा कहे इनसे ऊंच मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं हो सकता, इसलिए नाम ही है भागीरथ.
So, Baba says, no one can be higher than him in the human world. This is why his very name is Bhagirath.
कौन हुआ भागीरथ?
यह बाबा.
Who is Bhagirath? Students, this Baba.
अरे ये है नहीं, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया.
अरे इट इजंट दिस वन, ही इंडिकेटेड लक्ष्मी नारायण.
ये लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया. ये जो नारायण है, जो कृष्ण प्रिंस को जन्म देता है, प्रिंस बनाता है.
ही इंडिकेटेड लक्ष्मी नारायण सेइंग, दिस नारायण हु गिव्स बर्थ टू द प्रिंस कृष्ण हु मेक्स हिम द प्रिंस.
प्रिंस तैयार होता है ना इनके द्वारा.
द प्रिंस बिकम्स रेडी थ्रू हिम, डजंट ही?
नई दुनिया में प्रिंस है, इनसे जन्म लेगा.
द प्रिंस विल बी बोर्न थ्रू हिम इन द न्यू वर्ल्ड.
लेकिन वो प्रिंस ऊंच पद नहीं है, लेकिन ये ऊंच पद है, इसलिए ये भागीरथ गाया हुआ है.
हाउएवर द पोजिशन ऑफ द प्रिंस इजंट हाई, दिस वन इज हाई पोजिशन. दिस इज व्हाई ही हैज बीन प्रेज्ड एज भागीरथ.
क्या गाया हुआ है? भाग्यशाली रथ.
व्हाट हैज बीन प्रेज्ड? द फॉर्चुनेट चैरियट.
भाग्यशाली रथ क्यों गाया हुआ है?
व्हाई हैज ही बीन प्रेज्ड एज द फॉर्चुनेट चैरियट? स्टूडेंट्स कमेंट.
क्योंकि सारी दुनिया जो भाग्यशाली बनती है वो इस स्वरूप को याद करके भाग्यशाली बनती है, ऊंचे से ऊंचे पद पाती है.
नो, इट इज बिकॉज the entire world that becomes fortunate remembers this form and becomes fortunate. It receives the highest position.
इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना.
This is why it has been said in the Murli. To remember Narayan is the best पुरुषार्थ.
क्या?
What?
सचिव के दूसरे तीसरे चौथे कम कलाम वाले नारायण को याद करना नहीं.
It isn't about remembering the second, third or fourth Narayan with fewer celestial degrees of the golden age.
जो अव्वल नंबर नरसिंह नारायण बनता है उस स्वरूप को याद करना क्योंकि वही है भाग्यशाली रत्न.
It is about remembering the form that becomes the number one Narayan from a man, for he himself is the fortunate chariot.
तो इसलिए नाम ही है भाग्यशाली रथ, भाग्य रथ.
This is why the very name is the fortunate chariot, भागीरथ.
तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है.
You remember such a father through whom you received the inheritance of heaven.
क्या?
What?
तुम.
You.
तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है.
You remember such a father through whom you received the inheritance of heaven.
ये बात कब बोली?
When was this point said?
छाछा जो बोली.
It was said in 1966.
किससे बोली?
To whom was it said?
ब्रह्मा बाबा से बोली. ब्रह्मा बाबा से तुम कहते थे.
Students, to Brahma Baba. Was it said to Brahma Baba? Did he say you for Brahma Baba?
है? Brahma Baba तो बाजू में बैठता था. तुम कैसे बोलेंगे?
Brahma Baba used to sit next to him. How will he be called you?
है? Brahma Baba के लिए तो बोलते थे मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ. ये तो बीच में सुन लेता है. इसको थोड़े ही सुनाता हूँ.
In fact, it was said for Brahma Baba, I narrate to you children. This one listens to it in between. I certainly don't narrate to him.
ब्रह्मा को थोड़ी सुनाता हूँ.
आई डोंट नरेट टू ब्रह्मा.
क्यों नहीं सुनाता हूँ?
वाई डोंट आई नरेट टू हिम?
क्योंकि ये तो सुन लेता है और सुन करके एक काम से सुन करके दूसरे काम से निकाल लेता है. विचार करता ही नहीं उस पर कि मैंने क्या बोला.
इट इज बिकॉज ही डजंट लिसन टू इट बट ही लिसन्स टू इट फ्रॉम वन ईयर एंड लेट्स इट गो फ्रॉम द अदर ईयर. ही डजंट थिंक ओवर वॉट आई सेड एट ऑल.
विचार सागर मंथन जब तक नहीं होगा तब तक गीता ज्ञानामृत कैसे बनेगा?
Unless the ocean of thoughts is churned, how will the Gita become the nectar of knowledge?
और गीता ज्ञानामृत नहीं बनेगा तो मक्खन नहीं बनेगा.
And if the Gita doesn't become the nectar of knowledge, it won't become butter.
विलुवाया जाएगा तभी तो मक्खन बनेगा.
Only when it is churned, it will become butter.
और मक्खन खाएंगे तो ताकत आएगी.
And we will get energy if we have butter.
तो बोला तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है.
सो इट वॉज सेड यू रिमेम्बर सच अ फादर थ्रू होम यू रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन.
कैसे बाप को?
वॉट काइंड ऑफ फादर?
ब्रह्मा के तन में उस समय बोला तो ये तुम किससे बोला?
एट दैट टाइम ही सेड इट थ्रू ब्रह्माज बॉडी. सो फॉर होम डिड ही से यू स्टूडेंट्स टू द चिल्ड्रन.
कौन बच्चों से बोला? वहाँ सामने बैठे थे ऐसे बच्चे जो 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 स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हैं.
Which children? Did such children who received the inheritance of heaven from the father sit in front of him? Students, he brought them forth.
ये मर्जी करके बोला.
He brought them forth and said it.
ऐसे बच्चे थे जिनको बाप बुद्धि में धारण करके बुद्धि में उनका नक्शा खींच करके रूप स्वरूप खींच करके उनसे बात करते थे.
There were such children whom Baba assimilated in his intellect. He drew their image and form in his intellect and spoke to them.
तो तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है.
So you remember such a father from whom you received the inheritance of heaven.
माना इस ब्रह्मा को तुम याद नहीं करते हो. ब्रह्मा तो सभी छोड़ के चले गए. स्वर्ग का वर्षा तो किसी को मिला नहीं.
इट मीन्स यू डोंट रिमेम्बर दिस ब्रह्मा. इन फैक्ट ब्रह्मा लेफ्ट हिज बॉडी एंड वेंट अवे. नो वन रिसीव्ड द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन.
तो उसके द्वारा बाप बाप का रूप नहीं था, ब्रह्मा का रूप था.
सो इट वॉजंट द फॉर्म ऑफ द फादर थ्रू हिम. इट वॉज द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा.
अब तुम बच्चे उसको याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलना है.
नाउ यू चिल्ड्रन रिमेम्बर द वन फ्रॉम होम यू हैव टू रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन.
माना 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया तो उस समय वो बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है.
इट मीन्स द ईयर 1976 वॉज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ द फादर्स रेवल्यूशन. सो द फादर इज रिवील्ड एज द फादर एट दैट टाइम.
बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं.
मोस्टली द सन्यासीज गो एंड लिव इन हरिद्वार.
क्या?
व्हाट?
हरिद्वार.
स्टूडेंट्स, हरिद्वार. इन हरिद्वार
सन्यासी लोग हरि के द्वार में जाकर रहते हैं.
द सन्यासीज गो एंड लिव इन द द्वार मीनिंग गेट ऑफ हरि.
हरि? हरि माना कृष्ण.
हरि, हरि मीन्स कृष्ण.
सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा.
They keep saying the entire day, शिव काशी विश्वनाथ गंगा.
क्या?
What?
मुख से बोलते रहते हैं.
They keep saying through their mouth.
क्या बोलते हैं?
What do they say?
शिव काशी.
शिव काशी.
शिव और उनकी प्रिय नगरी काशी.
शिव एंड हिज डियर सिटी काशी.
काशी माना जिसमें काश्य माना तेज भरा हुआ है.
काशी मीन्स द वन हु इज फिल्ड विद काश्य, दैट इज ब्रिलियंस.
क्या है का तेज भरा हुआ है?
ब्रिलियंस ऑफ व्हाट? स्टूडेंट्स, ऑफ नॉलेज.
याद का.
ऑफ रिमेम्बरेंस.
याद का तेज नहीं कहा जाता. याद का तेज भरा हुआ
है. रिमेम्बरेंस. इट इजंट सेड द ब्रिलियंस ऑफ नॉलेज. शी इज फिल्ड विद द ब्रिलियंस ऑफ रिमेम्बरेंस.
ऐसी काशी नगरी जहाँ गंगा जी वास करती है, गंगा जी बहती है, वो शिव की नगरी.
इट इज सच काशी नगरी वेर गंगा जी रिसाइड्स, वेर गंगा जी फ्लोज.
उसको मुख से याद करते रहते हैं.
दे रिमेम्बर दैट सिटी ऑफ शिव विद देयर माउथ.
समझते नहीं है कि वो शिव काशी कौन है.
दे डोंट अंडरस्टैंड हु दैट शिव काशी इज.
वहाँ गंगा में जाकर के स्नान करते हैं.
They go there and bathe in the Ganges.
कहाँ?
Where?
काशी.
In Kashi.
काशी में जाते हैं, वहाँ गंगा में जाकर के स्नान करते हैं.
They go to Kashi and bathe in the Ganges there.
फिर बहाना बनाते हैं.
Then they make excuses.
क्या बहाना बनाते हैं?
What excuses do they make?
उनसे पूछा जाए कि तुम अगर तुम पावन हो, तुम पतित वो क्या नाम, तुम पावन हो, पवित्र सन्यासी हो, पावन हो, तो तुम गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो?
If they are asked, if you are pure sannyasis, why do you go to bathe in the Ganges?
तो बहाना बना देते हैं. क्या बहाना बनाते?
They make excuses. What excuses do they make?
कि सारी दुनिया गंगा जी में स्नान करके गंगा को पतित बनाती है, हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है.
The entire world makes the Ganges impure by bathing in it. When we dip our feet into it, the Ganges becomes pure.
तो कितना बहाना बनाते?
So they make such excuses.
वो तो ढोंगी लोग हैं.
In fact, they are deceitful people.
जो कहते हैं हम गंगा को पावन बनाते हैं.
Who say we make the Ganges pure?
मनुष्य मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकता.
A human being can't make another human being pure at all.
बाप को तो अकाल मूर्त कहते हैं.
The father is certainly called अकाल मूर्त.
क्या कहते हैं?
What is he called? Students, अकाल मूर्त.
अकाल मूर्त. अकाल माना जिसको काल आ नहीं सकता.
अकाल मूर्त. अकाल means the one whom death can't devour.
और कैसी मूर्ति?
अकाल मूर्त.
And what kind of मूर्ति? Meaning personality.
मूर्ति ऐसी जिसको काल नहीं खा सकता, ऐसी उसकी मूर्ति है.
इट इज सच अ मूर्ति विच डेथ कांट डिवोर. हिज मूर्ति इज सच.
अकाल तख्त कोई काठ की संदली नहीं होती है.
अकाल तख्त द इम्पेरिशेबल थ्रोन इजंट अ वुडन संदली.
सिखों ने तो वहाँ जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बनाया हुआ है, वहाँ लकड़ी का तख्त बना दिया.
The Sikhs have certainly made a wooden throne there in the golden temple of Amritsar.
अब वो लकड़ी का तख्त तो है नहीं.
Well, इट इज इंट अ वुडन थ्रोन।
अकाल मूरत बाप का ये रथ है जिसको कोई काल खा नहीं सकता।
इट इज द चैरियट ऑफ द अकाल मूर्त फादर दैट कांट बी डिवोर्ड बाय डेथ एट ऑल।
बाप कहते हैं मैंने ये रथ लिया है।
द फादर सेज आई हैव टेकन दिस चैरियट।
कौन कहते हैं?
हू सेज इट?
बाप कहते
हैं। द फादर सेज इट।
बाप बाप के रूप में जो रथ लेते हैं उसकी बात कही।
It was said about the chariot that the father takes in the form of the father.
Bhikkhu के बीच में एक तरफ चेला और दूसरी तरफ गुरु बैठे हैं।
On one side the disciple and on the other side the guru is sitting between the eyebrows.
जो रथ लिया है उसमें दो याद दिलाए।
It was reminded that two souls are sitting in the chariot that has been taken.
एक तरफ गुरु बैठा है।
On one side the guru is sitting.
गुरु कौन?
Who is the guru?
शिव बाबा।
शिव बाबा
है जब रथ में आया तो शिव बाबा हो गया ना।
When he came in the chariot he is शिव बाबा isn't he?
और दूसरी तरफ चेला बैठा है। चेला कौन हुआ?
And the disciple is sitting on the other side. Who is the disciple?
ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल वो पढ़ाई पढ़ने वाली है तो वो चेला हो गया।
ब्रह्मा सोल कृष्णा सोल इज द वन हु स्टडीज सो ही इज द डिसाइपल।
जरूर उनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना।
आई विल सर्टेनली कम एंड सिट नेक्स्ट टू हिम वोंट आई।
इनके बाजू में?
नेक्स्ट टू हुम?
चेले के बाजू में ही आकर बैठूंगा ना।
आई विल सर्टेनली कम एंड सिट नेक्स्ट टू द डिसाइपल वोंट आई।
नीचे बच्चों ये याद की तुम्हारी सच्ची चैतन्य यात्रा है।
स्वीट चिल्ड्रन दिस इज योर ट्रू एंड लिविंग जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस।
क्या? चैतन्य यात्रा है। जड़ बिंदु को याद करने वाली बात नहीं है।
इट इज द लिविंग जर्नी। इट इजंट अबाउट रिमेम्बरिंग द इनर्ट पॉइंट।
या प्लास्टिक के कास्केट से बनाए हुए चित्र में जो अंदर बल्ब रखा है उस बल्ब को याद करने की बात नहीं है।
और इट इजंट अबाउट रिमेम्बरिंग द बल्ब व्हिच इज केप्ट इनसाइड द प्लास्टिक कास्केट।
किसको याद करना है?
हु शुड यू रिमेम्बर?
चैतन्य। और चैतन्य किसको कहा जाता है?
द लिविंग वन। एंड हु इज कॉल्ड लिविंग?
बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है।
The one who speaks and moves around is called living.
चैतन्य माना?
What does living mean?
जो बोलता भी है और चलता भी है उसको चैतन्य कहा जाता है।
The one who speaks as well as moves around is called living.
वो तथाकथित ब्राह्मण किसको याद करते हैं?
Whom do those so-called Brahmins remember?
परम नाम में बिंदु को याद करते हैं। वो बोलता है?
They remember the point in the supreme abode. Does he speak?
बोलता भी नहीं।
He doesn't speak either.
और चलता है? चलता भी नहीं।
And does he move around? He doesn't move around either.
वो तो बिंदु है। बिंदु जब तक शरीर धारण न करे तब तक जैसे जड़वत।
He is certainly the point. Unless the point takes on a body, it is inert.
तो तुम जड़ बिंदु को नहीं याद करते हो?
So you don't remember the inert point.
तुम तो चैतन्य को याद करते हो।
You certainly remember the living one.
जैसे को याद करेंगे वैसा ही बनेंगे।
You will become like the one you remember.
अगर जड़ बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि जड़ हो जाएगी।
If you remember the inert point, your intellect will become inert.
कैसी जड़ हो जाएगी?
How inert will it become?
इतनी जड़ तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी कि परमात्मा का पूरा ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकते।
The intellect will become so inert that it won't be able to assimilate the complete knowledge of the Supreme Soul at all.
अधूरा ज्ञान लेंगे तो अधूरे नारायण बनेंगे अथवा नारायण की प्रजा बनेंगे।
If you take incomplete knowledge, you will become incomplete Narayan or the subject of the incomplete Narayan.
और फिर अधूरे नारायण बनने के कारण अधूरा देवता बनने के कारण कच्चे देवता कच्चा ब्राह्मण तो फिर क्या होगा रिजल्ट?
And because of becoming an incomplete Narayan, a weak deity, a weak Brahmin, what will be the result?
द्वापर से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए।
They will convert to other religions since the copper age.
तो मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देने के लिए।
So I have come to give you the inheritance through Brahma.
क्या कहा?
What was said?
आया हूँ।
I have come.
आया हूँ या चला गया हूँ?
Have I come or gone away? Students, he has come.
और वो ब्राह्मण क्या समझते हैं?
And what do those Brahmins think? Students, he has gone away.
और ब्रह्मा के तन में आया था, है? और चला गया?
He had come in Brahma's body. He has gone away.
अब वियोगी याद करते रहते हैं।
Now they continue to have vyogi remembrance. Vyogi means the one who is suffering the sorrow of separation.
तुम बच्चों को वियोग की कोई बात
नहीं
है।
There isn't anything like vyog, meaning sorrow of separation, for you children.
मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देने के लिए।
I have come to give you the inheritance through Brahma.
तो बीच में थोड़े चला जाऊँगा।
So I certainly won't go in between.
भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो भी जिसमें भी प्रवेश करता हूँ, उनका नाम ब्रह्मा रख देता हूँ।
Though Brahma left his body, whoever I enter, I name him Brahma.
और फिर ब्रह्मा भी प्रैक्टिकल में साकार में चाहिए।
In addition, I need Brahma in a corporeal form in practice.
क्या?
What?
द्वारा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ।
Through, I give the inheritance through Brahma.
देने वाला अलग और जिसके द्वारा देते हैं वो अलग।
The giver is different, and the one through whom he gives it is different.
तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ।
So, I give the inheritance through Brahma.
तो प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया।
Then, प्रजापिता ब्रह्मा is also the father of all.
क्या?
What?
एक है ब्रह्मा, एक है प्रजापिता ब्रह्मा।
One is Brahma, and the other is प्रजापिता ब्रह्मा.
वर्षा शिव बाबा से मिलता है।
You receive the inheritance from शिव बाबा।
प्रजापिता से नहीं मिलता, प्रजापिता की सोल कोई सुख शांति का मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली नहीं है।
You don't receive it from प्रजापिता। प्रजापिता's soul isn't the one who gives the inheritance of happiness and peace, मुक्ति and जीवन मुक्ति।
लेकिन प्रजापिता में शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहे जाते हैं।
However, Shiv Baba enters Prajapita. Then he is called Shiv Baba.
और फिर ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलता है।
And he has the gate to heaven opened through Brahma. So you receive the inheritance through Brahma.
मिलता है Shiv Baba से।
You receive it from Shiv Baba.
प्रदर्शनी में हजारों आते हैं।
Thousands of people come in exhibitions.
क्या?
What?
जो भी प्रदर्शनी तैयार होती है उस प्रदर्शनी में हजारों आते हैं।
Thousands of people come in the exhibitions that are held.
तो क्या सब राजा बन जाएंगे?
So, will everyone become kings?
नहीं।
No.
सब राजा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या गारंटी है?
Not everyone will become kings. Nevertheless, what is the guarantee?
स्वर्ग में आएंगे। प्रदर्शनी जो भी देखेंगे, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी कितनी होती आई, वो सारे स्वर्ग में आ जाएंगे।
स्टूडेंट्स, दे विल कम टू हेवन। विल ऑल दोस हु सी द एग्जीबिशंस कम इन हेवन? देयर हैव बीन सो मेनी एग्जीबिशंस ऑफ नॉन लिविंग पिक्चर्स। विल ऑल ऑफ देम कम इन हेवन?
के मरविल्ला के परम धाम में बैठ जाएंगे।
और विल दे डाई एंड सिट इन द सुप्रीम अबोड? स्टूडेंट, दे विल कम इन द सब्जेक्ट्स।
प्रजा में आ जाएंगे? प्रजा में आ जाएंगे तो भी तो स्वर्ग में आ जाएंगे।
They will come in the subjects. Even if they come in the subjects, they will come in heaven.
जितनों ने प्रदर्शनी देखी, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी इतनी ढेर सारी लगाई गई, अभी भी तो ये प्रदर्शनी देखने वाले सब स्वर्ग में आ जाएंगे।
All those who have seen the exhibitions, there have been many exhibitions of non-living pictures. Even now, so will all those who see the exhibitions come in heaven?
सब 84 जन्म ले लेंगे? नहीं।
Will all of them have 84 births? No. Student, those who follow Srimad.
तो अभी यहाँ तो बात ये आ रही, प्रदर्शनी में हजारों आते हैं.
No. Now the point here is thousands of people come in the exhibition.
वो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं है.
It isn't about the exhibitions of those non-living pictures.
जो चैतन्य चित्र है.
It is about the living pictures.
जो 73 में मेला हुआ था ना, पहला मेला, तो उसमें बोला था कि चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी का सजावट का इनाम बाप दादा देंगे.
The first fair that was organized in 1973, it was said in it. Bap Dada will give the reward for the decoration of the exhibition of living pictures.
और जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का सजावट का इनाम दीदी दादी देंगे.
And the दीदी दादीज will give the reward for the decoration of the exhibition of non-living pictures.
तो जड़ चित्रों की बात नहीं कही.
So it wasn't said for the non-living pictures.
जो चैतन्य चित्र संसार में प्रत्यक्ष होंगे.
The living pictures that are to be revealed in the world.
क्या?
What?
जिनके लिए बोला 3 सीट्स फिक्स हुई है.
It has been said for them. 3 seats have been fixed.
तो 3 सीट्स कौन सी?
So, which are those 3 seats?
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पाठ बजाने वाली 3 मूर्तियां, जिनके लिए मुरली बोल दिया कि ये त्रिमूर्ति का चित्र जो पुराना बना हुआ है, ये तो एक्यूरेट नहीं है.
There are the 3 personalities who play the part of Brahma, Vishnu and Shankar. It has been said for them in the Murli. This old picture of Trimurti that was prepared isn't accurate.
तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का accurate चित्र बनाना चाहिए.
You children should make the accurate picture of Trimurti.
इसमें ब्रह्मा का भी चित्र एक्यूरेट नहीं है, विष्णु का भी एक्यूरेट नहीं है, शंकर का भी एक्यूरेट नहीं है.
The picture of neither Brahma, Vishnu nor Shankar is accurate in it.
ये 3 मूर्तियां नहीं है जिनकी यादगार में तिरंगा झंडा बना है.
These 3 aren't those personalities in whose yadgar the tricolor flag has been made.
तिरंगा झंडा कपड़े का बनता है ना?
The tricolor flag is made of cloth, isn't it?
तो जरूर कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जो विश्व विजय करके दिखलावे.
So, certainly, there have been 3 clothes in the form of bodies who gain victory over the world.
है सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं.
They gain victory over the entire world.
तो वो 3 कपड़े ये नहीं है जो यहाँ बैठा दिए गए.
So, these ones who are shown here aren't those 3 clothes.
नहीं, तो.
Students, they are living. No, they are certainly living.
लेकिन यहाँ बैठाया किसको गया चित्र में? ब्रह्मा को.
However, who has been shown sitting here in the picture? ब्रह्मा.
विष्णु में भी जो चेहरा है वो ब्रह्मा का है.
विष्णु also has the face of ब्रह्मा.
शंकर में भी जो चेहरा है ब्रह्मा का है.
शंकर also has the face of ब्रह्मा.
तो वो रूप नहीं है.
So that isn't the form.
जो 3 रूप एक्यूरेट हैं, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं.
The 3 forms that are accurate, who gain victory over the entire world.
वो चित्र चाहिए, चैतन्य चाहिए.
Those living pictures are needed.
और चैतन्य चित्र बुद्धि रूपी पॉकेट में बैज के रूप में पड़े हुए होंगे.
And if you have the living pictures in the pocket like intellect in the form of a badge.
तो उससे तुम्हारी याद परिपक्व हो जाएगी.
Your remembrance will become firm with it.
जिनकी याद पक्की होगी वो उनके राज्य में आ जाएंगे.
The ones whose remembrance is firm will come in their kingdom.
माने 84 जन्म लेने वाले बन जाएंगे.
It means they will become the ones who have 84 births.
तो मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देना देने के लिए.
So I have come to give you the inheritance through Brahma.
शिव बाबा से वर्षा मिलता है, प्रदर्शनी में हजारों आते हैं.
You receive the inheritance from शिव बाबा. Thousands of people come in the exhibitions.
मगर ठहरते नहीं है.
But they don't stay.
क्या?
What?
जो ठहरते हैं अंत तक वो राजाई में आ जाते हैं.
Those who stay till the end come in the kingship.
और जो ठहरते नहीं वो राजाई में नहीं आते, प्रजावर्ग में चले जाते हैं.
and those who don't stay don't come in the kingship. They go in the subject category.
कौन सी प्रदर्शनी की बात?
Which exhibition is it about?
चैतन्य प्रदर्शनी में ठहरते हैं उनकी बात है कि अंत तक जो ठहरेंगे वो राजा में आएंगे, जो नहीं ठहरेंगे वो प्रजापति में चले जाते हैं.
It is about those who stay in the living exhibition. Those who stay till the end will come in the kingship. Those who don't stay go in the subject category.
कोटों में कोई गाया हुआ है ना?
It is praised, one among millions, isn't it?
क्या?
What?
मनुष्याणाम सहस्रेषु ऐसे बोला है ना?
It has been said, मनुष्याणाम सहस्रेषु, isn't it? Meaning, one among thousands of human beings.
ना सहस्त्र कोटन में को ऐसे बोला है?
It has been said, नर सहस्त्र कोटन में को. It means, few among millions of human beings.
तो कोटन में को जो गाया हुआ है, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई.
So, the few among millions who are praised, they are few among the millions and a few even among the selected few.
तो करोड़ों जो पुरुषार्थी हैं, उन करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई कोई उसको पहचान पाता है पूरी रीति.
So, some among the million purusharthis are able to recognize him completely.
क्या?
What?
करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई कोई उसको पहचान पाते हैं, और जो पहचान पाते हैं उनमें भी कोई कोई उससे प्राप्ति कर पाते हैं.
Some among the million purusharthis are able to recognize him, and some among even those who recognize him are able to make attainments from him.
राजा की प्राप्ति कर पाते हैं.
They are able to obtain the attainment of kingship.
तो गाया हुआ है कोटन में को.
So, it is praised. कोटन में को, meaning few among millions.
कितनी प्रदर्शनियां करनी पड़े जो कोटों में कोई निकलेंगे.
You will have to hold so many exhibitions so that some among a million come.
क्या?
What?
प्रदर्शनी को देखने वाले कोटों में कोई निकलेंगे.
Some among millions who see the exhibitions will come up.
ओम शांति.
ओम शांति.
ये है 1966 की रात्रि क्लास.
This is the night class dated 1966.
तुम बच्चों के 84 जन्म तो है ही.
You children certainly have 84 births.
क्या?
What?
84 जन्म लेने वाले तुम बच्चे नहीं हो.
You children aren't the ones who have 83 births.
कौन?
Who?
तुम बच्चे. सामने वाले. जो सामने बैठते हैं, जो चैतन्य प्रदर्शनी देखने वाले बच्चे हैं, और आज से अंत तक रहने वाले हैं.
You children who sit in front, the children who see the living exhibition and who stay from the beginning till the end.
चलो, ठहरते नहीं हैं.
All right, they don't stay.
चले जाते हैं.
They go.
लेकिन फिर भी जाएंगे कहाँ?
Still, where will they go?
फिर आएंगे.
They will come again.
तो बोला 84 जन्म तो तुम्हारे हैं ही.
So it was said, you certainly have 84 births.
बाकी ये जो तुम्हारा जन्म है ये है गुप्त.
As for the rest, this birth of yours is secret.
क्या?
What?
ये गुप्त जन्म है.
This is the secret birth.
कैसे?
How?
दुनिया नहीं जानती इनका जन्म कैसे हुआ.
The world doesn't know how you are born.
ये जो तुमको समझाते हैं वो तो शिव बाबा है.
The one who explains to you is शिव बाबा.
समझाने वाला तुमको शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा नहीं समझाने वाला है.
शिव बाबा is certainly the one who explains to you. It isn't ब्रह्मा बाबा who explains to you.
ब्रह्मा की सोल तो पढ़ाई पढ़ने वाली है.
In fact, ब्रह्मा's soul is the one who studies.
परंतु जो समझाने वाला है वो है तो निराकार ना.
However, the one who explains is certainly incorporeal, isn't he?
समझाने वाला तुमको निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है.
The one who explains to you is incorporeal, viceless and egoless.
वो ये नहीं समझते कि हम आत्माएं हैं दुनिया वाले.
They The worldly people don't consider themselves to be a soul.
दुनिया वाले नहीं समझते कि हम आत्मा हैं.
The worldly people don't consider themselves to be a soul.
और इसलिए ही वो हम सबका बाबा है.
And this is why he is Baba of all of us.
इसलिए.
Why?
हम आत्म की स्थिति में रहते हैं इसलिए हमारा बाबा.
We stabilize in the soul conscious stage. This is why he is our Baba.
दुनिया वाले नहीं समझेंगे क्योंकि वो आत्म की स्थिति में नहीं रहते हैं इसलिए उनका बाबा नहीं है.
The worldly people won't consider it, for they don't stabilize in soul conscious stage. This is why he isn't their Baba.
तो जो यहाँ आत्मा बनेंगे वो 84 जन्म लेंगे.
So, those who become a soul here will have complete 84 births.
जो आत्मा नहीं बनेंगे देवान में रहेंगे, देहंकार में रहेंगे, कुछ न कुछ संशय आता रहेगा सामने बैठ के, वो मेरे बच्चे नहीं बनते. 84 जन्म लेने वाले बच्चे बन न सके.
Those who don't become a soul, who stay body conscious, who have bodily arrogance, who keep having some or the other doubts while being face to face, don't become my children. They can't become the children who have 84 births.
तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं.
This is why all of our souls are brothers.
Fatherhood नहीं कहा जाता है.
It isn't called fatherhood.
अगर fatherhood होता तो कृष्ण को कोई भी याद नहीं करते.
Had it been fatherhood, no one would have remembered Krishna.
भाई भाई हैं इसलिए कृष्ण को याद करते हैं.
Because of being brothers, you remember Krishna.
आत्मा भी गुप्त है.
Soul is also secret.
इसको पता ही नहीं है.
No one knows at all.
निराकार बाप आकर के पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो.
That the incorporeal father comes and teaches, you are a soul.
गीता में भी भूल कर दिए.
They have made a mistake in the Gita as well.
कि कृष्ण भगवान है.
Saying Krishna is God.
कौन सी गीता में?
In which Gita?
बाहरी दुनिया की गीता.
In the Gita of the outside world.
अरे बाहर की दुनिया में तो बाहर के लोगों की बात होगी.
अरे there will be the concepts of the outside people in the worldly Gita.
लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया की गीता है.
However, the Gita of the Brahmin world.
कौन सी गीता?
Which Gita?
है? बोलती चलती तो बाद में.
Student, the one that speaks and moves. Yes, it is about the Gita that speaks and moves later on.
पहले जो जड़ गीता तैयार हुई, जो ब्रह्मा के मुख से निकली और कागजों में छपाई दी गई, उस गीता में भी उन्होंने नाम किसका डाल दिया? पिताश्री का नाम डाल दिया.
First, the non-living Gita which became ready, which came out of Brahma's mouth and was printed on papers, whose name have they inserted in that Gita too? They have inserted the name of Pitashri.
Pitashri Brahma.
Pitashri Brahma.
Brahma mana Krishna.
Brahma means Krishna.
तो कृष्ण का नाम डाल दिया तो गीता कैसे झूठी हो गई.
So when they inserted Krishna's name, that Gita became false.
अब वो तो जड़ गीता की बात हो गई.
Well, it is about the non-living Gita.
यहाँ तो चैतन्य गीता भी है.
Here, there is the living Gita as well.
चैतन्य जो गीता है उसकी बुद्धि में भी अभी तक नहीं बैठा है कि गीता का भगवान साकार में कौन है.
Till now, this hasn't sat in the intellect of the living Gita either, who God of the Gita in the corporeal form is. Students, he is Prajapita.
Prajapita Gita ka bhagwan thodi, Prajapita mein Shiv Baba hai.
Prajapita isn't God of the Gita. It is Shiv Baba in Prajapita.
Prajapita Gita ka bhagwan hota to 63 janam mein pehle hi uddhar kar deta.
Had Prajapita been God of the Gita, he would have already uplifted others in the 63 births.
अपना भी उद्धार नहीं कर पाया और दूसरों का भी उद्धार नहीं हुआ.
He couldn't uplift himself or others.
तो प्रजापिता हो या कृष्ण हो या राम हो ये कोई भगवान नहीं है.
So whether he is Prajapita, Krishna or Ram, they are in God.
तो गीता में भूल कर दी है कि कृष्ण भगवान है.
So this mistake has been made in the Gita that Krishna is God.
वास्तव में गीता माता की बुद्धि में ये पहले छप जाना चाहिए.
Actually, this should be imprinted on the intellect of Mother Gita first.
क्या?
What?
कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है और चैतन्य है.
The incorporeal Shiva Baba is God of the Gita and he is living.
Practical में आया हुआ है.
He has come in practice.
अच्छा, तो अब परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ.
अच्छा, so now the supreme soul says, I teach you राजयोग.
कृष्ण नहीं सिखाता है.
कृष्ण doesn't teach you.
कौन सिखाता है?
Who teaches you?
मैं शिव बाबा तुमको राजयोग सिखाता हूँ.
I शिव बाबा teach you राजयोग.
अब ये भी कहते हैं रुद्र ज्ञान ये किसी विनाश ज्वाला सम उत्पन्न हुई.
Now this one also says the flame of destruction was ignited from Rudra Gyan Yagya.
कौन कहते हैं?
Who says it?
यह भी कहते हैं. कौन कहते हैं यह?
This one also says it. Who is this one who says it?
ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई. हुई तो कब हुई?
ब्रह्मा बाबा also says the flame of destruction ignited from Rudra Gyan Yagya. It was ignited. So when did it happen?
हुई माने पास्ट की बात हुई ना.
It was ignited. That means it is about the past, isn't it?
माने पास्ट में यज्ञ के आदि में भी माला बनाते थे. बनाते बनाते फिर माला टूट गई. सब बच्चे बिखर गए.
It means in the past, in the beginning of the yagya as well, he used to make the rosary. Then the rosary broke while it was being made. All the children were scattered.
तो अब बाबा कहते हैं कि वो विघटन यज्ञ के आदि में ही हो चुका.
So now Baba says that disintegration took place in the very beginning of the yagya.
रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया उसमें से उसी समय रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी.
When Rudra Gyan Yagya was created, the flame of destruction ignited at that very time from the Rudra Gyan Yagya.
अब जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है वो तुम बच्चों को फिर से अब संपन्न करनी.
Now your children have to complete that flame of destruction that ignited.
तो अब रुद्र तो कृष्ण को नहीं कह सकते.
So now Krishna certainly can't be called Rudra.
क्या?
What?
कृष्ण के द्वारा ज्ञान यज्ञ नहीं रचा जाता.
The yagya of knowledge isn't created through Krishna.
यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण कृष्ण वाली आत्मा ने नहीं किया था.
In the beginning of the yagya, Krishna's soul didn't sow the seed of knowledge.
वो तो साक्षात्कार हुए उनको तो मुझ गए.
When he had visions, he was confused.
तो उनकी बुद्धि में नहीं आया साक्षात्कारों का अर्थ.
So the meaning of the visions didn't come in his intellect.
तो कौन हुआ रुद्र?
So who is रुद्र?
रुद्र शिव जो है जिसमें प्रवेश करता है.
रुद्र the one in whom शिव enters.
और उन साक्षात्कारों को जिसके द्वारा क्लियर किया वो व्यक्तित्व यज्ञ के आदि में रुद्र था.
And the personality through whom he cleared the visions was रुद्र in the beginning of the yagya.
उस रुद्र के साथ कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स की लड़ाई हो गई.
कृष्ण एंड हिज फॉलोअर्स हैड अ फाइट विद दैट रुद्र.
क्या?
व्हाट?
फॉलोअर्स ने किसका नाम डाल दिया?
हूज नेम डिड द फॉलोअर्स ऐड?
कृष्ण का नाम डाल दिया कि वो गीता का भगवान है.
दे एडेड कृष्णास नेम सेइंग ही इज गॉड ऑफ द गीता.
तो सन 47 से ब्रह्मा के तन में शिव ने जब प्रवेश किया तो लोगों ने ये समझ लिया कि बस यही गीता का भगवान है.
So when Shiv entered Brahma's body since the year 1947, people thought he himself is God of the Gita.
लेकिन गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता.
However, Krishna can't be God of the Gita.
कृष्ण तो रौद्र रूप नहीं धारण करता.
Krishna certainly doesn't take on the fearsome form.
रौद्र रूप कौन धारण करता है?
Who takes on the fearsome form?
शिव बाबा. शिव बाबा जिसको शंकर के साथ मिलाए देते.
शिव बाबा. शिव बाबा हु इज कम्बाइंड विद शंकर.
ब्रह्मा के साथ शिव को नहीं मिलाते. विष्णु के साथ शिव को नहीं मिलाते. कोई कारण होगा ना।
शिव इज इन कम्बाइंड विद ब्रह्मा और विष्णु, देयर मस्ट बी अ रीजन ऑफ इट, मस्टन्ट देयर।
यही कारण है कि शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कार्य संपन्न करता है वो बाप समान स्टेज को दान कर लेता है।
दिस इज द वेरी रीजन दैट द वन होम शिव एंटर्स परमानेंटली एंड अकम्प्लिशेस हिज टास्क ही अटेन्स द स्टेज इक्वल टू द फादर।
तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से बिना ज्वाला उत्पन्न हुई तो अब रुद्र तो कृष्ण को नहीं कह सकते हैं और यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए।
सो द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इग्नाइटेड फ्रॉम दिस रुद्र ज्ञान यज्ञ। नाउ कृष्ण कांड बी कॉल्ड रुद्र एंड ब्राह्मण्स आर सर्टेनली नीडेड फॉर यज्ञ।
क्या
वॉट
जो रुद्र ज्ञान यज्ञ को संपन्न करे उसमें चाहिए कौन? ब्राह्मण।
Who are needed for accomplishing the Rudra Gyan Yajna? Brahmins.
कच्चे ब्राह्मण चाहिए या पक्के ब्राह्मण चाहिए?
Are the firm Brahmins or the weak Brahmins needed? Students, firm.
जो कच्चे ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं?
What do the weak Brahmins do?
आहुति डालेंगे, हाथ जलेगा तो पीछे खींच जाएगा।
They put an offering and when their hand burns, they draw it back.
जब पीछे खींचेंगे तो आधी आहुति अंदर पड़ेगी, आधी आहुति बाहर दुनिया में गिर जाएगी। तो ऐसे ही होता है।
When they draw it back, half the offering will fall inside and the other half will fall in the outside world. So this is what happens.
धन धन धाम स्वर्ण परिवार की बाजी तो लगाते हैं सब ब्राह्मण।
All the Brahmins certainly stake their body, wealth, abode, friends and family.
लेकिन जो कच्चे ब्राह्मण होते हैं कन्वर्ट होने वाले वो अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं।
But the weak Brahmins who convert draw back their hand.
और जो पक्के होते हैं वो हिलने वाले नहीं।
And those who are firm don't shake.
उनके लिए बाबा ने मुरली में बोला है तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर।
For them, Baba has said in the murli, You children have come with your head on your palm.
Yeah.
What?
अपना सर हथेली पर लेकर के बाबा के सामने आए हो। बाबा ये सर हमारा हथेली पर आपके सामने रखा हुआ है, आप चाहे तो इससे काम लो और चाहे तो खेल खलास कर दो।
You have come with your head on your palm in front of Baba, saying, Baba, our head is kept on the palm in front of you. If you wish, you may make use of it, and if you don't, you may finish it off.
So Brahman to jarur chahiye.
So Brahmins are needed for sure.
Krishna to ho na sake.
Krishna certainly can't be that.
Yeah?
What?
Rudra, roop dhan karne wala Krishna nahi ho sakta.
Krishna can't be the one who takes on the fearsome form.
Sari duniya mein Shri Krishna ko bhagwan mante hain.
Shri Krishna is considered to be God in the entire world.
कौन सी सारी दुनिया में?
In which entire world? Students, in the Brahmin world.
ब्राह्मणों की दुनिया में भी, सारी दुनिया में कृष्ण को साकार भगवान दादा लेखराज को मानते हैं।
Even in the entire Brahmin world, Krishna alias दादा लेखराज is considered to be the corporeal God.
मुख से भले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है।
Though they say with their mouth, Krishna isn't God of the Gita.
लेकिन प्रैक्टिकल में उनकी बुद्धि में भरा हुआ है कि गीता का भगवान साकार में अगर कोई व्यक्तित्व रहा है तो वो दादा लेखराज ही रहा है और दुनिया में कोई गीता का भगवान साकार में नहीं हो सकता।
They have it in their intellect in practice. If there was a personality who was God of the Gita in a corporeal form, it was Dada Lekhraj himself. No one else can be God of the Gita in a corporeal form in this world.
अब तुम समझते हो भगवान तो निराकार है।
Now you understand, God is certainly incorporeal.
क्या?
What?
जो भगवान होगा वो तो बाप है ना?
God is the father, isn't he?
जैसे और धर्म पिताएं बाप हैं, अपनी अपनी जनरेशन के।
The way other religious fathers are the fathers of their respective generation.
जो भगवान बाप है उस भगवान को तो धर्म पिता भी याद करते हैं। गुरु नानक भी एक की तरफ इशारा करते थे, उसको याद करते थे ना।
Even the religious fathers remember God the Father. Guru Nanak also indicated the one. He remembered him, didn't he?
तो जो भी धर्म पिताए हैं उन बापों का भी वो शिव बाबा तो बाप है.
So that Shiv Baba is certainly the father of all those religious fathers too.
उसको सब भगवान मानते हैं.
Everyone considers him to be God.
श्री कृष्ण को कोई भगवान
नहीं
मानते.
As for Krishna, no one students, no one considers him as God. Don't they? Students, they do.
मानते तो है.
They do consider him to be that.
ठीक है, तो सारी दुनिया भगवान मानती है.
The entire world considers Shri Krishna to be God.
लेकिन श्री कृष्ण को कोई निराकार ही नहीं कहेगा.
But no one will say Shri Krishna is incorporeal.
बीज छोटा होता है कि जड़ की तरह मोटा होता है बड़ा होता है.
Is a seed small or thick and big like a root?
जड़ें और वृक्ष तो साकार होती हैं.
Roots and trees are corporeal.
और बीज?
And what about the seed?
बीज तो सूक्ष्म होता है.
The seed is in fact subtle.
जैसे बरगद.
For example, there is the banyan tree.
बरगद का बीज बहुत सूक्ष्म होता है और बरगद बहुत बड़ा होता है.
The seed of the banyan tree is very subtle. And what about the banyan tree? It is very big.
तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो प्रजापिता जिसमें शिव प्रवेश करते हैं वो तो बहुत सूक्ष्म है.
Similarly, the seed of the human world, that Prajapita whom Shiv enters, is very subtle.
तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो निराकार है.
So the seed of the human world is incorporeal.
ब्रह्मा का कोई चित्र ऐसा नहीं है जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला हो.
None of Brahma's photos have an incorporeal stage like that of Abraham, Buddha, Christ and Guru Nanak.
Christ ke chehre ko dekho.
Look at Christ's face.
Buddha ke chehre ko dekho.
Look at Buddha's face.
Guru Nanak ke chehre ko dekho.
Look at Guru Nanak's face.
Chehra dekhne se hi pata chalta hai ki inki atma is saakar srishti mein nahi hai.
Just by looking at their face, you come to know that their soul isn't in this corporeal world.
निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है.
Their incorporeal stage is visible.
तो उन पिताओं का भी उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है शिव वो जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो वो तो कितना निराकारी स्टेज वाला होगा.
When Shiv, the father of even those religious fathers, is revealed in this world, he will be the one with such a great incorporeal stage.
तो वो ही निराकार बाप है.
So he himself is the incorporeal father.
वास्तव में ब्रह्मा का कोई भी चित्र.
Actually, none of Brahma's photos.
हजारों चित्र खींचे गए फोटो लेकिन एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला.
There are thousands of his photos. But there isn't a single photo with incorporeal stage.
तो कृष्ण तो निराकार नहीं होता.
So, Krishna certainly isn't incorporeal.
भगवान कहते हैं मैं तो अभी गुप्त हूँ.
God says, I'm certainly hidden now.
क्या?
What?
गुप्त हूँ तो कभी निराकार और कभी साकार.
When I am hidden, sometimes I am incorporeal and sometimes corporeal.
कभी देखने में क्या आएगा?
Sometimes, what will be visible?
कभी साकार देखने में आएगा कभी निराकार. तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि निराकार कौन है साकार कौन है.
Sometimes corporeal one and sometimes the incorporeal one will be visible. So the children won't be able to understand who the corporeal one and who the incorporeal one is.
अब तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनना है.
Now, you children have to become पारस बुद्धि.
ऐसी बुद्धि
पारस
बुद्धि.
What kind of intellect? पारस.
पारस में क्या खासियत होती
है? What is the society of पारस?
कहते हैं कि पारस ऐसा होता है कि जिसे लोहे में लगा दिया जाए लोहे के टुकड़े में वो सोना बन जाता है.
It is said पारस has such speciality that if you rub it on an iron bar it turns into gold.
अब ऐसा कोई पारस होता नहीं है.
Well, there isn't any Paras like that.
ये तो भगवान के उस स्वरूप की यादगार है.
इट इज सर्टनली द यादगार ऑफ गॉड्स फॉर्म.
कि वो स्वरूप जब संपन्न बनता है निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है.
When that form becomes complete, when it stabilizes in the incorporeal stage,
तो जिन आत्माओं के संग के रंग में आएगा.
The souls in whose company he comes.
क्या?
What?
दृष्टि मात्र से भी अगर संग के रंग में आएगा तो वो आत्माएं पलट जाएंगी.
Even if he comes in their company just with vision, those souls will transform.
तो पारस पत्थर हो गया.
So, it is the Paras stone.
जैसे कहते हैं पार्श्वनाथ.
For example, it is said पार्श्वनाथ.
नेपाल में किसका मंदिर है?
Whose temple is in Nepal?
पार्श्वनाथ का मंदिर है.
There is the temple of पार्श्वनाथ.
तो पारस बुद्धि बनना है.
So you have to become the ones with a Paras like intellect.
क्या?
What?
बुद्धि पारस होगी तो दृष्टि भी पारस हो जाएगी.
When your intellect becomes Paras, your vision will also become Paras.
जिसको भी टच करेगी वो पलट जाएगा.
Whoever touches it will transform.
कोई कैसा भी ज्ञान को न मानने वाला हो और जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वो आत्मा चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी. लेकिन ये है बात कब की?
No matter to what extent someone rejects the knowledge, as soon as his vision falls on him, that soul will change, transform. But when is it about?
जब बाप प्रत्यक्ष होगा.
When the father is revealed.
अभी तो गुप्त पार्ट बजा रहा है तो कोई पहचान नहीं सकता.
Now he is playing a hidden part, so no one can recognize him.
अब तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनना है, बाप कहते हैं.
Now your children have to become पारस बुद्धि. The father says.
कि बाप बताते हैं कि धर्मों के नाम भी शरीरों पर ही पड़ते हैं.
The father says the religions are also named on the basis of the body. हाँ
हाँ. बौद्ध धर्म पड़ा तो बुद्ध नाम हुआ.
When it is the Buddhist religion, his name is Buddha.
मुस्लिम नाम पड़ा, मुस्लिम धर्म किसके नाम पर? मोहम्मद.
When it was named the Muslim religion, after whose name was it named? Muhammad.
Islam.
Islam.
Ibrahim.
Abraham.
तो राशि तो एक ही हुई ना.
So the horoscopes are the same, aren't they?
तो बोला धर्मों के नाम भी शरीरों पर ही पड़ते हैं.
It was said the religions are also named after the bodies.
आत्मा कभी फारसी गुजराती नहीं कहलाती.
A soul is never said to be Persian or Gujarati.
क्या?
What?
कहलाती है क्या?
Is it called that?
शरीर कहलाता है.
The body is called that.
पारसी है, गुजराती है.
It is a Persian or a Gujarati.
लेकिन आत्मा कभी भी देश के हिसाब से नहीं कही जाती.
However, a soul is never known by its country.
क्या होता है?
What happens?
एडवांस में भी कोई समझते हैं ये दक्षिण भारत का है.
Even in the advanced knowledge, some think that he is from South India.
कोई समझते हैं ये उत्तर भारत का है.
Some think that he is from North India.
अब बाबा ने ये बोल दिया, अब ये तो बाप दादा ने, कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश.
Now Baba, Avyakt Bap Dada has said, South India is the foreign land of Bharat.
तो समझ लेते हैं कि दक्षिण भारत से जो भी आत्माएं आ रही हैं, एडवांस में, वो सब विदेशी हैं.
So they think that all the souls who are coming from South India in advanced knowledge are foreigners.
अरे आत्मा थोड़े ही स्वदेशी विदेशी होती है.
अरे, a soul certainly isn't a स्वदेशी or a foreigner.
क्या उस आत्मा ने हमेशा दक्षिण भारत में ही जन्म लिया होगा क्या?
Would that soul have been always born in South India?
ये कोई जरूरी नहीं.
No, it isn't necessary.
ये तो शरीर के आधार पर बता दिया कि आखिरी जन्म में यहाँ जाकर के जन्म लिया, लेकिन आत्मा तो उत्तर भारत की भी हो सकती है.
It has been said on the basis of the body that they are born there in their last birth, but the soul can also belong to North India.
उसकी निशानी क्या होगी?
What will be its sign?
है? उसकी निशानी होगी कि वो जैसे ही ज्ञान में आएगा तो तुरंत ज्ञान को पकड़ लेगा.
Its sign will be that as soon as he comes in the knowledge, he will catch the knowledge.
दूसरी बात.
Secondly.
ज्ञान में आने के बाद वो बाप की भाषा को जल्दी कैच कर लेगा.
After coming in knowledge, he will learn the father's language soon.
क्या?
Yes.
जो बाप की भाषा वो बच्चे की भाषा हो जाएगी.
As if the father's language, so will be the children's language.
बच्चा घर में पैदा होता है तो कौन सी भाषा बोलता है?
When a child is born in a house, which language does he speak? Students of his parents.
माँ बाप की भाषा बोलता है तो कहते हैं मातृभाषा.
He speaks the language of his parents, so it is called the mother tongue.
अगर बच्चा बाप की माँ की भाषा न बोले तो क्या कहा जाएगा?
If the child doesn't speak the language of his parents, what will be said?
कि माँ बाप का बच्चा
नहीं
है.
He isn't the child of his parents.
कहीं दूसरी जगह पला है.
He must have grown up somewhere else.
तो ये आत्मा जो है वो गुजराती या पारसी नहीं होती है, वास्तव में शरीर होता है.
So, this soul isn't a Gujarati or Persian. Actually, the body is that.
तो ये गलत फहमी नहीं हो जानी चाहिए.
So you shouldn't have this misunderstanding.
तुम अपन को आत्मा समझो.
Consider yourself as a soul.
क्या?
What?
ये नहीं समझो मैं दक्षिण भारत का हूँ, उत्तर भारत का हूँ, मराठी हूँ, तो गुजराती हूँ के बंगाली हूँ.
Don't think I am from South India or North India. I am Marathi, Gujarati or Bengali.
ये बुद्धि में नहीं रहना चाहिए. अगर रहता है तो इसका मतलब निराकारी स्टेज आत्म की स्टेज नहीं बनी है.
You shouldn't have this in your intellect. If you have this in your intellect, it means you haven't attained the incorporeal stage, the soul conscious stage.
बाप तुमको सुख देते हैं.
The father gives you happiness.
तो माँ में कब याद करो.
So remember me alone.
सुख कब मिलेगा?
When will you receive happiness?
जब मुझे एक को याद करेंगे तो सुख मिलेगा.
When you remember me alone, you will receive happiness.
अब तुम ही जानते हो हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं.
Now, you yourselves know, we souls are the children of Shiv Baba.
तुमको समझाया भी जाता है.
It is also explained to you.
कि आत्मा के लिए धर्म आदि की कोई बात नहीं है.
A soul doesn't have any religion and so on.
सब आत्माएं ब्रदर्स हैं.
All the souls are brothers.
क्या?
What?
आत्मिक धर्म ही अलग है.
The soul conscious religion itself is different.
आत्मिक धर्म माना?
What does the soul conscious religion mean?
सब आत्मा आत्मा भाई भाई निराकारी स्टेज वाले.
All the souls are brothers for one another with an incorporeal stage.
निराकारी स्टेज वाली है रुद्रमाला.
It is Rudramala that has the incorporeal stage.
Rudramala mana?
What does Rudramala mean?
Kin bachchon ki mala?
It is the rosary of which children?
Baap ke bachchon ki mala.
It is the rosary of the father's children.
Baap ke bachche hain, unki khasiyat kya honi chahiye?
What should be the speciality of the father's children?
Baap nirakari? To baap ke bachche bhi aatmik sthiti wale nirakari bachche hone chahiye.
When the father is incorporeal, his children should also be incorporeal children with the soul conscious stage.
तो इसमें धर्म आदि की कोई बात नहीं है.
So, there is no question of religion etc. in it.
सभी ही ब्रदर्स हैं.
All are brothers.
मैं फलाना हूँ.
I am so and so.
ये सब देह के धर्म हैं.
All these are the bodily religions.
अब बाप कहते हैं.
Now the father says.
कि बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है.
Children, you certainly have to become pure in this last birth.
एक तो आत्मा बनना है.
One is to become a soul.
और दूसरा पवित्र जरूर बनना है.
And the other is to become pure for sure.
रावण ने तुमको 2500 साल अपवित्र बना के रखा.
Ravan has made you impure for 2500 years.
क्या?
What?
रावण दस सिर वाली.
रावण, the one with 10 heads.
अनेक मतें दी तो अनेक मतों पर चलते चलते हम हमारी बुद्धि भी विचारी बन गई।
He gave many opinions and our intellect became adulterous by following many opinions.
बुद्धि भी विचारी बनती है तो कर्मेंद्रिया भी विचारी बन जाती है।
When the intellect becomes adulterous, the karmendriya also become adulterous.
अब तुम बच्चों को नशा करना चाहिए।
Now, you children should be elated.
कि रावण ने हमको अपवित्र बनाया, अब राम आकर के हमको पावन बना रहे हैं।
Thinking, Ravan made us impure. Now, Ram has come and is making us pure.
तो अब तुम राम के बने हो।
Now, you have become Rams.
और तुम सन्मुख बैठे हो।
In addition, you are sitting face to face.
किसके?
Whose? Students reply, No.
राम बाप के।
The father Ram.
तो नशा करता है ना?
So you feel elated, don't you?
क्या?
What?
वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्राह्मण ऐसे नहीं समझते हैं कि हम राम के सन्मुख बैठे हैं।
Those so-called Brahma Kumar Kumaris or Brahmins don't think that they are sitting face to face with Ram.
और तुम?
And what about you?
तुम समझते हो हम राम के प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हैं?
You think we are sitting face to face with Ram in practice?
तू नशा कर जाता है?
So you feel elated.
बुद्धि में आता है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं।
You have it in the intellect. शिव बाबा teaches us.
और उनको? उनको शिव बाबा नहीं पढ़ाते क्यों?
And शिव बाबा doesn't teach them. Why?
क्योंकि वो कृष्ण का तन था।
It is because it was Krishna's body.
कृष्ण के तन में आकर के बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाते हो तो माँ का पार्ट है, माँ से वर्षा तो नहीं मिलता।
He doesn't come in Krishna's body and play the father's part. It is the mother's part. In fact, one doesn't receive the inheritance from the mother.
तो तुमको नशा करना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते।
So, you should be elated, thinking, शिव बाबा teaches us.
तो अब बाप समझाते हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चे अब तुम पतित न बनो।
Now the father explains, my sweet children, don't become impure now.
क्या?
What?
हाँ, राम की सेना है ना?
It is Ram's army, isn't it? So what does it lack the most? It has impurity the most.
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकार अति के बड़े हुए।
All the five vices, lust, anger, greed, attachment and ego are present in them to a great extent. Om Shanti.